मेरे अत्यंतात्मीय मित्रों नमस्कार। AFEIS के आज 21 जुलाई 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आपसे उपभोक्ता संरक्षण कानून जो लागू कर दिया गया है कल से भारत में, उसके बारे में कुछ बातें करूंगा। लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। एक खबर आप लोगों ने अखबार में पढ़ी होगी, या फिर अगर आप टीवी चैनल्स देख रहे होंगे तो दूरदर्शन चैनल्स पर ये स्ट्रिप पर ये न्यूज़ भी आई थी कि आपको मालूम है कि जो UPSC के रिजल्ट घोषित होने थे 2020 के, वो घोषित नहीं हो पाए हैं। उसका कारण ये था कि इससे पहले के इंटरव्यू पूरे होते, कोरोना का संकट उठ करके खड़ा हो गया, तो कुछ इंटरव्यूज बचे हुए थे और फिर वो लगातार टल रहे थे। UPSC ने फिर उसकी डेट अभी घोषित कर दी थी 20 तारीख से। अभी UPSC ने एक कदम उठाया है कि जो इंटरव्यू देने के लिए आएंगे उन्हें हवाई जहाज का किराया दिया जाएगा। दोस्तों, एक छोटी सी खबर है, कोई एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से खबर नहीं है। अभी तक जो UPSC है, देखिए शायद आप लोगों को मालूम होगा कि अगर UPSC किसी को इंटरव्यू कॉल भेजती है तो फिर आपको आने जाने का वो खर्च देती है। ट्रेन से आप आ रहे हैं या बस से आ रहे हैं, उसका वो भुगतान करती है बाकायदे। और जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो अपने कागज वगैरह जब आप जमा करते हैं तो आपको बाकायदे आपसे रसीद लेकर के वही भुगतान कैश में कर दिया जाता है। दोस्तों, अब आप देखिए कि UPSC अपने काम के मामले में कितना सिंसियर है और संवेदनशील भी है। यहां उसकी एक संवेदनशीलता दिखाई पड़ रही है और साथ ही कि नहीं, अब इसको अंजाम देना ही देना है, यानी कि इंटरव्यू पूरे करने ही करने हैं। क्योंकि अपेक्षाकृत यूं मान लीजिए कि अभी हवाई जहाज की यात्रा एक सुरक्षित यात्रा कही जा सकती है। इस तथ्य को आप लोगों के सामने रखने का मेरा एक और भी उद्देश्य है। देखिए, 4 अक्टूबर प्री एग्जाम 4 अक्टूबर घोषित कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या हो, कुछ स्थिति दिखाई नहीं दे रही है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, हो सकता है कि आप लोग मेरे इस बात से सहमत न हो, कि आपको अपनी तैयारी एज इट इज रखनी चाहिए। इस तथ्य को मैं इस रूप में जोड़ना चाह रहा हूं कि आप देखिए कि किस तरीके से UPSC अपने साइकिल को, यानी कि जो इसका वार्षिक चक्र है, बनाए रखने के लिए कितनी प्रतिबद्ध है। तो हो सकता है कि 4 अक्टूबर तक अगर स्थितियां बहुत बेहतर नहीं भी होती हैं तो UPSC कोई ऐसा निर्णय ले ले कि एग्जाम भी हो जाए और जो नहीं दे पा रहे हैं उनके चांसेज भी बच जाएं। हो सकता है कुछ ऐसा निर्णय ले ले, हम नहीं जानते, वो तो डिपेंड करेगा उस समय स्थितियां क्या बनती हैं क्या रहती हैं। तो बस ये छोटी सी बात मुझे आप लोगों को बतानी थी। एक अच्छी खबर आप लोगों ने न्यूज में, अखबारों में पढ़ी होगी, न्यूज में भी था कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है ब्रिटेन की, उसने वैक्सीन के बारे में अच्छी खबर दी है। और अच्छी खबर उसकी ये है कि उसके जो 2 चरण है ट्रायल के, वो सफल रहे हैं और अब अंतिम चरण भर बच गया है। और इसको लेकर के अखबारों में काफ़ी कुछ आज खबर के रूप में बातें छपी भी हैं। और 2 चरण के जो रिजल्ट आए हैं उसके बारे में जो बताया गया है वो ये है कि वैक्सीन ने 2 काम सबसे महत्वपूर्ण किए हैं। पहला तो ये है कि जो पेशेंट थे उनके एंटीबॉडीज के स्तर को बढ़ाया है, एंटीबॉडीज आप जानते हैं, पहले से आपको मालूम होगा, हम लोग इस पर बात कर चुके हैं। बेसिकली ये जो हमारे शरीर का जो इम्यून डिफेंस सिस्टम है उसी का एक पार्ट है। और इसमें ये होता है कि एंटीबॉडी इम्यून सिस्टम से एक छोटे 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 प्रोटीन के कण बनते हैं और ये जो प्रोटीन के कण होते हैं वो वायरस की सतह पर जाकर चिपक जाते हैं और उसे निष्क्रिय कर देते हैं। वैज्ञानिक शब्दावली में ये है एंटीबॉडीज। तो इसके स्तर को बढ़ाया है। और दूसरी बात जो देखने में आई वो ये है कि जो वायरस से लड़ने वाले जो इम्यून टी सेल्स होते हैं उसे भी बढ़ाया और काफी स्तर तक बढ़ाया। टी सेल्स, बेसिकली टी सेल्स क्या है, देखिए हमारे बॉडीज में जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं उसी प्रकार एक प्रकार है टी सेल्स। ये होता यह है कि हमारे शरीर में जो संक्रमित कोशिकाएं हैं वो सेल्स जो संक्रमित हो गई हैं उन्हें ढूंढती हैं और उन्हें ढूंढकर नष्ट कर देती हैं। तो जब आप संक्रमित सेल्स को ढूंढकर नष्ट कर देंगे तो सीधी सी बात है कि संक्रमण का फैलाव खत्म हो जाएगा, रुक जाएगा और आगे चल करके वो खत्म हो जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर है मित्रों, आगे देखिए कि क्या स्थिति बनती है। लेकिन पूरी दुनिया वैक्सीन की खोज में लगी हुई है, भारत भी इसमें काम कर रहा है। आपको मालूम है कि जो हमारा आयुर्विज्ञान संस्थान है दिल्ली का, उसने भी ट्रायल शुरू कर दिया है। लेट अस सी। एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करते समय थोड़ा सा इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। एक प्रश्न उठाया है सुप्रीम कोर्ट ने, खासकर अभी आपको मालूम है कि विकास दुबे का जो भी इनकाउंटर में जो मृत्यु हुई है उसको लेकर के सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है कि ये जो विकास दुबे है इस पर 65 क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, आपराधिक मामले चल रहे हैं 65, और वो सामान्य अपराध नहीं है, क्रिमिनल आपराधिक मामले हैं। तो फिर कोर्ट ने पूछा है कि भाई जिसके ऊपर 65 आपराधिक मामले चल रहे हों वो जमानत पर कैसे है। ये सच में सोचने की बात है, और ये तथ्य मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, आपके दिमाग में दर्ज हो जाना चाहिए कि भारत में जो भ्रष्टाचार की स्थिति है, जो न्याय की स्थिति है, जो प्रशासन की स्थिति है, जो राजनीति है, जो अपराध हैं, उनके लिए मुझे लगता है कि ये जो स्टेटमेंट है उन टॉपिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 65 क्रिमिनल केसेस हैं लेकिन वो व्यक्ति जमानत पर छूटा हुआ है, समाज में इंटरेक्शन कर रहा है। एक यहां सवाल उठता है कि अगर पहले दूसरे तीसरे अपराध में ही उसे जेल में डाल दिया जाता, सुनवाई जल्दी हो जाती, सजा हो जाती, या चलिए अगर नहीं सजा नहीं भी होती है तो बाइज्जत बरी हो जाता, तो आज ये स्थिति देखने में नहीं आती। तो दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, ये आपके दिमाग में दर्ज होना चाहिए, निबंध लिखने में भी आपके काफी काम आ सकता है। फ्रेंड्स, एक मैं आपको आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूँ, रुचिर शर्मा जी का है। रुचिर शर्मा के बारे में आप जानते हैं, विश्व के भी जाने माने आप यूं कह लीजिए कि राइटर भी हैं, खासकर इकोनॉमिक्स पर काफ़ी लिखते हैं। कोरोना के बाद की दुनिया में कौन सा देश जीतेगा, इन्होंने जर्मनी को लेकर ये बात कही है, जर्मनी के बारे में बताया है। ये आर्टिकल आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, आज के दैनिक भास्कर में ये छपा है। अगर संभव हुआ तो कल या परसों मैं इस पर बात कर सकता हूं कि यानी इस आर्टिकल का कैसे आप अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल करेंगे। इस तथ्य को लेकर के मैं हो सकता है कि बात करूं अगर कोई दूसरी बहुत महत्वपूर्ण घटना दिखाई नहीं पड़ी तो। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, वो है उपभोक्ता कानून जो अभी 2019 में बनाया गया था और जो लागू हो गया है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। देखिए, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसका बेसिक क्या है, हम बेसिक पर बात करते हैं। इसका बेसिक ये है कि इस कानून के जरिए दो लोगों को शक्तिशाली बनाया गया है। नंबर वन, उपभोक्ता को अधिक अधिकार संपन्न, या यूं कह लीजिए कि अपने अधिकारों का उपयोग कर सके, इसकी सुविधाएं प्रदान की गई है। दूसरा यह है कि जो उपभोक्ता फोरम थे जो इससे जुड़े हुए, जो सुनवाई किया करते थे, या यूं कह लीजिए कि उपभोक्ता के मामलों की सुनवाई करने वाले जो कोर्ट हुआ करते थे, हालांकि उन्हें कोर्ट हम नहीं कहते, याद रखिए, है ना, उनके अधिकारों में वृद्धि की गई है। ये दो इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। मैं इंपॉर्टेंट तथ्य की बात इसलिए कर रहा हूं कि जब किसी भी टॉपिक का जो बेस होता है, जो महत्वपूर्ण चरित्र होता है, अगर वह आपके दिमाग में आ जाए, बैठ जाए, तो प्री एग्जामिनेशन में कितना भी घुमा फिरा करके आपको फंसाने की कोशिश एग्जामिनर करे, आप निकल जाएंगे, आपको रास्ता दिखाई दे जाएगा और आप सही तक पहुंच जाएंगे। इसलिए स्पेशली मैंने ये दो पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं, उपभोक्ता और कमीशन। कमीशन यहां मैं इसलिए कह रहा हूं, पहले इसका नाम फोरम था, अब बदल करके इस अधिनियम में उसका नाम कमीशन कह दिया गया, आयोग कर दिया गया है। अब इसका नाम जिला उपभोक्ता फोरम न हो करके अब यह होगा जिला आयोग, जिला उपभोक्ता आयोग हो गया है, इसलिए मैं कमीशन की बात। इन दोनों के अधिकार बढ़ाए गए हैं। तो दोस्तों, उसमें क्या परिवर्तन किए गए हैं, आइए मैं दो तीन जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो आपके सामने रख दूं। पहला तो यह है कि देखिए, अभी तक होता यह था कि जैसे हमने कोई सामान खरीदा, मान लीजिए कि आपने भोपाल में सामान खरीदा, तो अब आप चाहे भले ही दिल्ली के रहने वाले हैं, तो अगर उस सामान में कुछ गड़बड़ी होती है और आपको लगता है कि आपके साथ चीटिंग की गई है, तो अब आप उसकी रिपोर्ट, जो भी केस मामला दर्ज करना है, वो आप भोपाल में कर सकते हैं। अब ये तो बहुत ही अव्यवहारिक सी बात थी, अब उसको बदल दिया गया है। उन्होंने कहा कि नहीं, जहां आप रहते हैं बकायदे वहां के भी डिस्ट्रिक्ट कमीशन में आप केस दायर कर सकते हैं। तो ये बहुत व्यावहारिक हो गया, तो देखिए आपके अधिकार बढ़ गए, आपके लिए सुविधाजनक हो गई ना चीजें। दूसरा उसमें यह भी दिया हुआ है कि पहले जैसे आप ऑनलाइन चीजें मंगाते ई कॉमर्स कंपनियां, तो उनको बहुत सी चीजों में दूसरे तरह की छूट मिल जाती थी, वो फायदा उठा लेते थे जो हमारा उस समय नियम कानून था उसके तहत। अब जो है ई कॉमर्स कंपनियों पर भी बिल्कुल वही कानून लागू होंगे जो कानून आप दुकान में जाकर के सामान खरीदते हैं उन पर लागू होते हैं। तो यह एक फिर से आप देखिए कि आपका अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया गया है। और अभी तक देखिए कि जो जिला उपभोक्ता फोरम होते थे, क्या था, तीन स्टेजेज हैं इसका, इसके जिला उपभोक्ता जिला के स्तर पर, इसके बाद राज्य के स्तर पर, और इसके बाद राष्ट्र के स्तर पर, है ना। ये तीन स्तर हैं सामान्यतः हमारे प्रशासन के भी, हालांकि प्रशासन के तो नीचे और भी स्तर होते हैं। तो पहले क्या था कि जो जिला स्तर का फोरम होता था वो 20 लाख रुपए तक की सुनवाई करता था, अब इसके अधिकार क्षेत्र बढ़ाकर के 1 करोड़ रुपए कर दिया गया, ठीक है। जब अधिक का होता था तो आप स्टेट कंज्यूमर में जाते थे तो वो 20 लाख तक की सुनवाई करता था, तो अब उसको बढ़ा करके 10 करोड़ तक कर दिया गया, यानी कि 1 करोड़ से 10 करोड़ तक स्टेट आयोग सुनवाई करेगा। और इसके बाद जो राष्ट्रीय उपभोक्ता जो है वो तो बटने चले, लेकिन फिर 10 करोड़ से जितने भी अधिक का होगा उसकी सुनवाई अब राष्ट्रीय स्तर पर की जाएगी। अब आप देखिए कि उपभोक्ता और कमीशन दोनों को जो एक परिवर्तन, दोनों के लिए जो एक परिवर्तन किया गया जो बहुत ही व्यावहारिक है वो ये है, अब ये रिकॉर्ड में है कि आप केस दायर कर दीजिए उपभोक्ता फोरम में जाकर के, 7-7 साल तक के केसेस पेंडिंग पड़े हुए। अब आप बताइए कि फिर किसको पड़ी है, तो कितने सारे केसेस तो फिर जाते ही नहीं है। अब इसमें कहा गया है कि नहीं, 3 महीने के अंदर उन्हें मामले का निपटारा करना पड़ेगा, 3 महीने के अंदर। तो अब आप देखिए कि आयोग के भी अधिकार बढ़ गए, अधिक व्यावहारिक भी हो गया, उपभोक्ता के लिए भी सुविधाजनक हो गया। तो दोस्तों इस तरह के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण व्यावहारिक परिवर्तन इस उपभोक्ता संरक्षण कानून में किए गए हैं, और मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी और मेन एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी। तो दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको उपलब्ध कराई जा रही हैं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं, श्रेया शुक्ला, राहुल राजपूत मुंबई से, और अलंकृता आहूजा, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।